चलिए अगली दुआ पे चलते हैं।
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
इसका तर्जमा दोहराते हैं। अन्नी बेशक मुझको मसनी यद दुर्रु जरर ने छुआ है वह और अंत तू अरहमुर रहमीन सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है रहम करने वालों में। एक स्ट्रेच में क्या होगा? अन्नी मसनी यद दुर्रु व अंत अरहमुर रहमीन बेशक मुझे बीमारी ने छुआ है और ए अल्लाह तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। सूरत अंबिया की आयत 83 में ये दुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाते से मांगी गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के चुने हुए नबी, साबिर भी थे और शाकिर भी थे और दुनिया की सारी नेमतें मौजूद थीं, लेकिन सारी नेमतों के होने के बावजूद भी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे और साबिर भी थे। आप सोच रहे होंगे कि नेमतों की मौजूदगी में सब्र करना क्या होता है, हालांकि हकीकत क्या है कि नेमतों के छिनने पे जो सब्र मतलूब है उससे ज़्यादा मुश्किल सब्र नेमतों के मिलने पे है। यानी उस नेमत को उस तरीके से इस्तेमाल करना कि जैसे रब चाहे और अल्लाह की खुशी में रहना। अल्लाह ताला ने आजमाइश करनी चाहिए। बहुत सारी रिवायात हैं जो इस वक्त मौजू नहीं, लेकिन बात जगह आता है कि शैतान ने इस पे एतराज़ भी किया कि क्या हुआ, वो तो उसको तो सब कुछ मिला हुआ, शुक्र क्यों नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने एक एक करके सारी नेमतें ले ली, माल भी गया, बेटे भी मर गए, सब कुछ ख़त्म हुआ, सेहत थी, बिलाखिर जिस्मानी मरज़ का शिकार हो गए। तकरीबन 18 साल तक स्किन डिजीज़ में मुब्तला रहे और कहते क्या थे कि क्या हुआ, इतने साल तो अल्लाह ने सेहत दी थी, अभी चंद ही साल तो हुए बीमारी के। ये सब्र का कौन सा दर्जा? ये वो दर्जा है जिस पे बहुत थोड़े लोग पहुँचते हैं। सब्र की कई किस्म से बांट की जाती है, लेकिन इस बात को समझने के लिए सब्र की तीन किस्में आपके सामने अगर रख दूँ, एक तो क्या होता है कि इंसान के ऊपर तकलीफ़ आए और वो सब्र करे, जो अल्लाह चाहेगा वही होना था, अब मुझे इसमें कोई नहीं, मैं राज़ी हूँ अल्लाह ताला की रज़ा पे, कबूल कर ले। लेकिन एक दूसरा सब्र क्या होता है कि इंसान उस तकलीफ़ के आने पे खुशी महसूस करे। पहला दर्जा क्या कि आ गई ये तकलीफ़, ठीक है कबूल कर ली, अल्लाह का फ़ैसला था। लेकिन दूसरा दर्जा उससे बढ़ जाता है और वो क्या है कि खुशी महसूस करे कि तेरा शुक्र है तूने मुझे इस काबिल समझा और मुझ पर ये मुसीबत डाली, इसका मतलब कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरे गुनाहों को पाक करना चाहता है। यहाँ कुछ लोग झड़ जाते हैं। पहले दर्जे पे सब्र करने वाले ज़्यादा होंगे, इस दूसरे पे आने वाले थोड़े हैं, लेकिन एक तीसरे दर्जे का सब्र है जिस पे मुकर्रबीन के सिवा कोई नहीं पहुँचेगा। और वो कौन है कि बंदा रब से ये तमन्ना करे कि तू मुझ पे मुश्किल डाल और मैं उस पे सब्र करूं। अंबिया कराम ऐसे ही लोगों में से थे, मुश्किलें आती थीं, दिल की खुशी से उसको कबूल करते थे और कभी कुछ दिन तक कोई मुश्किल ना आती थी तो परेशान होकर उठ जाते थे कि हमारे रब ने हमको क्यों छोड़ दिया, वो हमें पाक क्यों नहीं करता। तो लिहाजा अंबिया कराम के जो किस्से हैं ये वाक़यात हम सब के लिए नसीहत हैं। हम अपने आप को चेक करें, क्या हर वक़्त शिकवे तो नहीं करते, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये फलां हो गया, मेरी तो ये चीज़ ख़राब। नहीं, बीमार भी होते हैं साथ शिकवे भी करते रहते हैं, ठीक है अल्लाह ने लगा दी बीमारी, सेहत नहीं रही तो बीमारी भी नहीं रहेगी, जवानी नहीं रही तो बुढ़ापा भी नहीं रहेगा, लेकिन इंसान सब्र करे। हमारा इस दुआ को पढ़ने का तरीका क्या होगा? पहली बात तो ये है कि कुछ बीमारियां इंसान की ज़ाहरी तौर पे उसको दिख रही होती हैं, हम में से हर एक को कोई ना कोई उज़र लाहिक होगा, मुमकिन है, और कोई ये कहे कि मुझे कोई बीमारी नहीं तो ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। तो पहली बात है कि इस दुआ को पढ़ते हुए कि ए अल्लाह मुझे बीमारी लगी है, हम अपनी ज़ाहरी और बातनी तमाम बीमारियों को तसव्वुर में रखें, जिस्मानी बीमारियाँ, इखलाकी बीमारियाँ, रूहानी बीमारियाँ, नफसियाती बीमारियाँ, मुआशरती बीमारियाँ, कितनी किस्म की तो बीमारी है ना। बीमारी किसको कहते हैं? एतदाल का बिगड़ना। नॉर्मल टेम्परेचर सही होता है, उससे बढ़ गया तो बुखार हो गया, आप बीमार हैं। एक ब्लड प्रेशर अल्लाह ताला ने मुकरर कर दिया है, कम हो गया तो आपका बीपी लो है, ज़्यादा हो गया तो हाई है। कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल था, कम हुआ या ज़्यादा हुआ आप बीमार हो गए। दिल की धड़कन एक ख़ास एंगल पे होनी थी, वो कम या ज़्यादा हुई आप बीमार हो गए। तो गोया के जहाँ भी हमारे अखलाक में बिगाड़ है, हमारे मामलात में बिगाड़ है, उसको पहले कन्फेस करें कि अल्लाह मेरे अंदर अभी बहुत सारी अखलाकी बुराई हैं। इनको जहन में रखते हुए दुआ मांगें कि अल्लाह तू मेरी मदद फरमा कि मैं अपनी इन बीमारियों पे काबू पाऊँ। जिस्मानी बीमारियों के लिए तो बहुत सारे डॉक्टर मौजूद होते हैं जो हेल्प करते हैं, लेकिन बाज़ इंसान की ऐसी आदत और ऐसी बुराइयाँ होती हैं कि जिसको इंसान को ख़ुद ही समझना पड़ता है। और फिर इसको आप इस एंगल से भी मांग सकते हैं कि अल्लाह मैं नहीं जानती मेरे जिस्म में इस वक्त कितनी बीमारियाँ शुरू हो चुकी हैं और अभी कोई सिम्टम्स नहीं, मुझे पता ही नहीं, तू जानता है, तो लिहाजा इससे पहले कि वो बीमारियाँ मुझे ख़त्म करें तू इसको ख़त्म कर दे। और अगर कोई मुझ पे तकलीफ़ या बीमारी आ जाती है तो उसको मेरे गुनाहों का कफ़ारा बना दे। ला बसूर तहूर इंशा अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार को देखते तो यही कहा करते थे कि गम ना करो, ये बीमारी तुम्हें गुनाहों से पाक कर देगी। तो लिहाजा इस एहसास को सामने रखते हुए इंसान दुआ कर सकता है कि अल्लाह तू मेरी इस बीमारी को दूर फरमा दे और मुझे अपने पास से सेहत दे। यहाँ से एक और बात भी पता चलती है कि वह अंदा रहमुर रहमीन, कि अल्लाह तू बेहतरीन रहम करने वाला है। बीमारियों की बात थी तो यहाँ दिल चाह रहा था, या इंसान की अक्ल अगर देखे तो सोच सकता है इंसान कि यहाँ ये आना चाहिए कि अंतशाफ़ी, कि अल्लाह तो शिफा देने वाला है या तेरा नाम अशाफ़ी है, लेकिन शाफ़ी की बजाय यहाँ लफ्ज़ अरहमुर राहमीन आया। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान को उसकी बीमारियों से पाक करना अल्लाह का रहम है। एक दुआ जो अमूमन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मांगते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का नस्तगीस, के ज़िंदा और थामने वाले मुझे थाम ले, मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ। ये वो दुआ है कि जो आप शदीद किस्म की बेकरारी में पढ़ते थे। आज जब लोग अपने मुख्तलिफ मामलात में दुआ के लिए बात करते हैं तो मैं उनको अक्सर इसी बात को जहन में रख के कहती हूँ कि आप ये पढ़ा करें कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का इस्तगीस। क्यों? कि जिस पे अल्लाह की रहमत हो गई उसके बच्चों के रिश्ते भी हो जाएंगे, उसका शौहर भी ठीक हो जाएगा, उसकी जॉब भी आ जाएगी, उसके गुनाह भी दूर हो जाएंगे। तो हकीकत यह है कि इंसान अल्लाह की रहमतों का बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। अब इस सारे शऊर को जहन में रख के एक दफ़ा फिर सुनते और दुआ को मांगते हैं।
अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन।